चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमीऊणजिणं वीरं अनन्तवरणानदंशनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवले सुदकेवली बणिदं। यह नियमसार नामक जो शास्त्र है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव के जो प्रवचन है उसके हम पेज नंबर 40 से आज चालू करते हैं। क्या कहा कि यहाँ यह बता रहे हैं कि जो परम पारिणामिक भाव है वह परम पारिणामिक भाव तो उत्पाद वे जो है उससे निरपेक्ष ऐसा भाव है। यहाँ कहते हैं शूं किधु आ, मिल गया सबको? दो बातें बताएं उन्होंने कि हाँ परम पारिणामिक भाव तो उत्पाद वे निरपेक्ष एक रूप छे अने द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे। शूं किधु आ के उत्पाद वे रूप मोक्ष मार्गनी जे अवस्था थाय छे तेनाथी आ परम पारिणामिक भाव निरपेक्ष एक रूप छे भिन्न छे। कारण के उत्पाद वे नवी अवस्था उपजे ने जूनी अवस्था व्यय रूप थाय एम कहता ज बे भाव थई गया जारे आ पारिणामिक भाव तो एक रूप छे। आहा हा जे उपजे ने विनसे एवी अवस्था पर्याय थी अपेक्षा विनानी आ चीज छे। आहा हा ए त्रिकाल ध्रुव 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 नित्य 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 एवी अनादि अनंत अविनाशी चीज छे। परम पारिणामिक भाव एक न्यायक भाव जे छे 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 एम त्रिकाल छे पने विद्यमान छे तेने आई पारिणामिक शब्द सूचवे छे। यहां ये बता रहे हैं यह जो पारिणामिक भाव जो है वह द्रव्य स्वभाव भाव है पर्याय से निरपेक्ष है और यह पारिणामिक भाव यह बताता है कि यह जो जिसके बारे में हम भाव बात कर रहे हैं वह है त्रिकाल है कभी उसकी उपस्थिति नहीं है ऐसा नहीं हमेशा वो है रूप है। तो वो उसकी हमेशा जो विद्यमानता है पना है उसी को यह पारिणामिक भाव सूचित करता है। आ पारिणामिक भाव कहे छे द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे एटले शुं के द्रव्य एटले वस्तु अर्थ एटले प्रयोजन द्रव्य जेनु प्रयोजन छे अर्थात जेनु प्रयोजन अखंड अभेद एक रूप त्रिकाली वस्तु छे ते द्रव्यार्थिक नय छे अने आ पारिणामिक भाव छे ते आ रीते द्रव्यार्थिक नय नो विषय छे पर्यायार्थिक नय वर्तमान उत्पाद वे रूप बदलती अवस्था पर्याय ने बतावे छे। जारे द्रव्यार्थिक नय त्रिकाली एक रूप द्रव्य ने बतावे छे। समझाणु काय? देखो यहाँ क्या बताते हैं कि यह जो पर्याय अर्थिक नय का जो पर्याय विषय है वो वर्तमान पर्याय की बात करें यानी वर्तमान में द्रव्य द्रव्य रूप से भी है और द्रव्य पर्याय रूप से भी है, लेकिन पर्याय के बारे में कथन करने वाला वह व्यवहार नहीं है, पर्याय नहीं है, पर्यायार्थिक नहीं है, व्यवहार नहीं पर्यायार्थिक नहीं है। और द्रव्य की जो परम परिणामिक भाव जो नित्य कायम टिकने वाला ऐसा जो द्रव्य का जो स्वभाव है उसी को बताने वाला जो नय है उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य के बारे में कहने वाला वह द्रव्यार्थिक नय और उसी समय जो पर्याय है उसके बारे में कहने वाला वह पर्यायार्थिक नय। हाँ प्रश्न पूछ रहे पन बधु शीखवा करता छ खाईनी दया न पाड़ी है। वो कंटाल गया बोले अपनो काम नहीं आता हम माता पच्ची था तो ये ऐसे करने से ये सब द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय ये सब समझने से क्यों ने हम छ काई नहीं दया एट छ काई एट षट काई जीवों की दया क्यों न पालन करे ऐसा पूछता दयालु है ना वो तो ऐसा पूछता तो छ काई नहीं कौन दया पाड़े सांभने हवे परमा तो आत्मा नु काई कर्तव्य ज नथी। क्या कहा कि पर की मैं दया पाल सकता हूं ऐसा जब तू कर रहा है कह रहा है मान रहा है और उस अनुसार प्रयत्न भी कर रहा है तो तू अपने स्वयं की अदया पाल रहा है यानी स्वयं की हिंसा कर रहा है क्षणे क्षणे भाव मरण मर रहा है आत्महत्या कर रहा है। अभी बोलो आत्मघात गुजराती में क्या बोले क्यों के स्व के तरफ न देखते हुए जहां तेरे कुछ चले नहीं ऐसी जगह में जाके छटकाई जीवों की दया पालने का तू सोचता है क्या तू पर का परिणाम कर सकता है तो इसलिए कहा कि कौन पाड़े क्या लिखा दया कौन छकाईनी कौन दया पाड़े। भाई जब तेरे को ऐसा पता लगेगा कि मैं पर को ना जिला सकता हूं ना मार सकता हूं तब तेरे को अंदर से तो और दया पालने के परिणाम आएंगे। घबरा मत तेरे से कोई छूटने वाला नहीं। अरे जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वर्तने वाले ऐसे जो सिद्धोपयोग में एकदम अतीन्द्रिय आनंद का वेदन लेने वाले ऐसे मुनिराज भी जब छठे गुण स्थान में आते हैं तब वो ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं। क्या तो ईर्या समिति पूर्वक क्यों चलते हैं कि भाई हम तुम कैसे चलते इधर उधर देखते देखते और वो चार हाथ जमीन देख के चलते यानी अपने पैर के नीचे कोई जीव आके न मर जाए ऐसे उनके अंतरंग में परिणाम होते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मैं पर जीवों को ना मार सकता हूं ना जिला सकता हूं ऐसा उनकी खातरी भी है श्रद्धा भी सचोट है फिर भी ऐसे भाव आए बिना नहीं रहते। अभी महाव्रत जो लिया है अहिंसा महाव्रत का जो पालन करते हैं अहिंसा महाव्रत यानी क्या उसमें भी षटकाय जीव आ गए कि नहीं त्रस्त जीव और स्थावर जीव उनकी तो हिंसा नहीं होने देते वो होती नहीं उनसे होने नहीं देते यानी वहां कर्ता बुद्धि आई ख्याल में आई। अरे उनके वैसे उनके हत्या करने के नाश करने के उनकी हिंसा करने के भाव ही नहीं आते उनके ख्याल में। ये तो बात ऐसी है तो इसलिए कह रहे हैं कि छ कायनी कौन दया पाड़े क्योंकि तेरे परिणामों के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता है। ये पहले पहले श्रद्धा में तो ले फिर तेरे ऐसा कुछ हो जावे वो बात जुदी है और ऐसे कहने से किसी के शुभ परिणाम आने से रुक जाए ऐसा कभी होगा ही नहीं क्योंकि जब हम ऐसा मानते हैं कि छ काय की दया मेरे से नहीं पलती है मतलब उनका मैं हत्या नहीं कर सकता हूं या उनको पाल नहीं सकता हूं तो ऐसे जो भाव है वो तो शुद्ध भाव होंगे ना बेन अशुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव यानी क्या वो तो दया पालने के और मैं नहीं पाल सकता हूं ऐसा भी परिणाम है वो भी शुभ उपयोग है तो हम तो मान रहे कि अरे क्या है हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा समझता ही नहीं तो कुछ ऐसी बात है तो क्या कह रहे हैं देखो छ काय नहीं कौन दया पाड़े सांभने आवे यानी चुप बैठना तेरे को क्या समझता है ऐसा करके समझाते परमात्मा आत्मानुं काय कर्तव्य ज नथी। प्रश्न, देशनी सेवा करवी करिए तो के जन सेवा ते प्रभु सेवा एम कयुं छे ने? अभी 15 तारीख को है ना, सांभळने हवे देश क्या तारी चीज छे ए तो बहारनी बीजी चीज छे भाई, तारो देश तो अहीं अंदरमां छे। हा हा, असंख्य प्रदेशी अनंत गुणोनो आखो एक समाज तारो देश छे। हा हा, अनंत गुणोनो वास्तु हो एवो तारो देश छे। हा हा, लोकना जेटला प्रदेशो छे एवडो असंख्यात प्रदेशी भगवान तारो देश छे। इसका अर्थ क्या लेना जया बेन? हाँ बराबर, अब यहां क्या पूछा है देखो, क्या बताए, लोकना जेटला प्रदेशो छे एवडो असंख्य प्रदेशी भगवान तारो देश छे, इसका अर्थ क्या? हाँ, लोक प्रमाण, आत्माना प्रदेश केटला? लताबेन बराबर कही सकसो शू कहवा मांगे छे? बहु सरस, एकदम बराबर 100%। क्या कहा यहां पर देखो, आत्मा जो है वह आत्मा का जो आकार कहो या वॉल्यूम कहो वो कितना है, तो असंख्य प्रदेशी है। वो कितना क्षेत्र व्याप्ता है, तो कहते हैं लोग लोकाकाश में जितने एक एक आकाश द्रव्य के प्रदेश वो कितने हैं, असंख्यात है, उतने असंख्यात प्रदेश प्रत्येक आत्मा के हैं। वो भले हाथी के पर्याय में हो या चींटी के पर्याय में हो या महामत्स्य हो, कोई भी बीच वाला कोई भी बीच में हो, उसके प्रदेश कितने रहेंगे, असंख्यात प्रदेश। ये हम पहले सब याद किए थे ना, तो अभी वो याद आना चाहिए कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहा, लोकना जेटला प्रदेशो छे जयबेन एवडो असंख्यात प्रदेशी, तो लोक में असंख्यात प्रदेश है और उतने ही असंख्यात प्रदेश अभी मुझ में है। तो हाथी हो जाऊं तो बड़े हो जाएंगे ना, प्रदेश बढ़ेंगे क्या नहीं, और छोटी चींटी हो जाए, क्या बोलते हैं आप लोग, कीड़ी, तो आत्मा के प्रदेश कम होंगे कि नहीं, उतने के उतने रहेंगे। हाँ, एवडो असंख्यात प्रदेश भगवान तारो देश छे, अने एमा अनंत गुणनो समाज वसे छे, आवडो मोटो देश अने तेमा अगग अगग आवडी मोटी संख्या वसे, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद वीर्य अकर्तृत्व अभोक्तृत्व करण संप्रदान जीवत्व आदि, आहा हा, अनंत अनंत शक्ति रूपी समाज नो जेमा एकमेक पने वास एटले रेवानु रेटान छे, एवो महान देश प्रभु तू आत्मा छो। अने ते आई कहे छे द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे, आ ज्ञान नु परम ध्येय अने ध्यान नु एकमात्र ध्येय छे। आउ तारू तत्व बहु झीणू सूक्ष्म छे प्रभु, पर आ बधु केटलू याद राखू? रुचि किधर चल रही है? के आमा तो बहु थोड़ू याद राखवानू छे, वेपार धंधामा केट केटलू याद राखे छे ए तो रुचिनो सवाल छे। जेनी जेमा रुचि होय तेने याद राखी ले छे। पहले क्या था अपने समाज में, गुजराती समाज में, यानी जैन गुजराती लोग जो है वो सारे वाणिया होते थे। वाणिया यानी समझे थे? बनिया, बनिया भी मतलब जो अनाज का धंधा करते हैं ना, वो मेजोरिटी ऐसे लोग थे। तो वहां जरा वो भाव बढ़ जावे तो इधर एक छटक, मतलब अभी 10 ग्राम का भी जितना वजन होगा उसका हिसाब उसका तैयार होता था। कोई पाव किलो मांगे, यानी पहले तो पाव शेर एक छटा या इधर शेर भर जो भी कुछ, तो उसको बराबर याद रहता था कौन सी वस्तु कहाँ रखी, वो बराबर ऐसा हाथ इधर देखे इधर से ऐसा निकालते, तो वो तो पूरा याद रहे उसका। और ये आत्मा के इतने प्रदेश है, ये छह द्रव्यों के इतने इतने क्वांटिटी है, ये किटलू किटलू याद रखे ऐसा बोलते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आमा तो बहुत थोड़ू याद रखवानु छे, वेपार धंधा में केट केटलू याद रखे छे। अभी ये तो अभी अभी आपको तो वाणिया को नहीं समझ में आवे, लेकिन जो शेयर बाजार में काम करता है उसको, अरे भाई वो रिलायंस का क्या दाम है फटाफट, अभी उसका क्या है चटाचट, सब वो याद रहता है। हा? कि ये फला पॉलिसी का क्या फायदा है, तो दे धनाधन, सब मुखोद्गत है ये जीवन, क्या कुछ होता है ना वो, हाँ जीवन श्री पद्मश्री जो भी होता हो तुम्हारा, हाँ ये सब याद रखते हैं। उसके कितने फायदे, इतना इतना लाख का बीमा होगा तो उसका इतना क्या बोलते हैं, हाँ नहीं 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 प्रीमियम, हाँ ये सब आप फटाफट, क्यों उसमें रुचि है। और यहाँ ये तो एग्जाम्पल है भैया, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये तो अपने ही भाषा में, क्योंकि आजकल कोई वाणी का दुकान नहीं चलाता है, लेकिन शेयर बाजार का दुकान चलाता है, तो उसको तो दिन ना रात वो कोई भी चैनल आवे उसके ऊपर वो भाव चलता है, यही तरह इधर बात करेगा फोन से उधर उधर क्या है, तो तेरा भाव कौन से मूल में बिक रहा है वो तो सुन, ऐसा आचार्य जो कहते हैं। देखो क्या है, ऐसा कहने में आता है कि हमने शादी जरूर नहीं की है, लेकिन मंडप के नीचे से बहुत बार गुजरे हैं। वैसे हमारे अरविंद भाई भी पहले बहुत शेयर बाजार में घूमते थे, शेयर में बहुत डील करते, अभी वो जो होना है सो होना है, जाने दो वो देखते नहीं, अभी जो होना है सो होना है। क्या कहा देखो, आमा तो बहु थोड़ू याद रखवानु छे, वेपार धंधा में केट केटलू याद रखे छे, ये तो रुचि नो सवाल छे, यानी जिस रुचि नो सवाल छे, एटले जेनी जेमा रुचि होय त्या एनो वीर्य दौड़े, एटले उसमें उसको बराबर ख्याल रहता है, जेनी जेमा रुचि होय तेने याद राखी ले छे। समय सारणी 320 गाथानी जैसे आचार्य गुरु टीका में कहू छे के शक्ति रूप जे मोक्ष छे ते पारिणामी भावे छे, ने जे व्यक्ति रूप मोक्ष छे ते क्षायिक भाव छे। अब ये समझ में आया, ब्रह्मा क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति रूप यानी जो भी देखो, जो कोई देखो, बात तो यह है व्यक्तता कब होगी, पर्याय में होगी, और जो शक्ति रूप से मोक्ष है वह तो द्रव्य का विषय है, कहते हैं द्रव्य में शक्ति है, और व्यक्त जो होता है वो पर्याय में होती है, तो जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में उत्पन्न होना वो तो क्षायिक भाव है, क्योंकि कर्मों का क्षय हो गया ना सब, तो उसके अपेक्षा से जो जो कर्मों के नाश से जो उस गुणों का सम्यक यानी परिपूर्ण स्वभाव प्रकट हुआ है वो तो परिपूर्ण कैसा होगा, जैसा स्वभाव है वैसा। इसलिए यहां कह रहे हैं इसके लिए तो हमें पांच भाव पहले समझना चाहिए, फिर पांच भाव में और उसके पेटा भेद, तो ये सारी बातें जल्दी समझ में आएगी। पांच भाव के नाम आते हैं रसीला बेन आपको, पांच भाव कौन से हैं? हाँ जय बेन आप जानती है ना, अरे हम नहीं चले, हम नहीं चले, बॉल पेन केटला लावाना केम याद राखो, हाँ एक माणस ने पण ओछा नहीं था, एम करीने जो जहां रुचियो है ने त्यां तो पहला विचार करे, अरे 25 माणस आवे ने आपणे 26 लई जाइए, ये करे के नहीं याद, पछी आम नेम ने ये भगवान जो आवे घणो थयो, तमारे तो बधु याद राखवू पड़शे हो, हवे अहींया आवे एटले ड्यूटी लागे पाछी। डॉक्टर साहब आप बताएंगे पांच भाव कौन से हमने दिखे थे? हाँ तो ये जो पारिणामिक आदि जो हमने ये पांच भाव देखे, तो उसमें क्षायिक भाव यानी जब भी कोई पर्याय यानी गुण है, वह गुण की जो व्यक्तता है यानी पर्याय जो है, वो पर्याय जब वो स्वभाव जैसी हो जाती है तब वहां, मतलब जब स्वभाव को कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, तो पर्याय में जब सारे कर्म हट जाते हैं, जैसा हमने क्षायिक ज्ञान कहा, तो क्षायिक ज्ञान यानी जो ज्ञानावरणी कर्म था वो पूरा पूरा नष्ट हो गया, तो ज्ञान बिल्कुल स्वभाव जैसा, सर्वज्ञ स्वभाव जैसा ज्ञान का ज्ञान की पर्याय भी वैसी प्रकट हुई तो उसको क्षायिक भाव कहेंगे, और जो मूल असल में स्वभाव भाव है उसको पारिणामिक भाव कहेंगे। अब यहाँ क्या देखा है, देखो शक्ति रूपे फर्स्ट लाइन समय सारणी 320 गाथानी जैसे नाचार कृत टीकामा कहूं छे के तू कहूं छे शक्ति रूप जे मोक्ष छे ते पारिणामिक भावे छे ने जे व्यक्ति रूप मोक्ष छे ते क्षायिक भावे छे। तो व्यक्ति रूप मोक्ष छे એટલે व्यक्ति कोई मोक्ष नहीं, ए मोक्ष ने पर्याय जे प्रकट थई छे ते व्यक्ति रूपे मोक्ष। हा आज व्यक्ति रूप मोक्ष छे ए तो नवी उत्पाद वे रूप पर्याय એટલે परिणाम छे। यानी क्या कहते हैं, समय समय में हर समय में नई मोक्ष की पर्याय उत्पन्न होती है और उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। यानी मोक्ष कितने काल का है तो एक समय का है कहते हैं। और प्रवाह की अपेक्षा देखे तो सादी अनंत काल तक रहने वाली है, और हम भी एक एक समय में पलटते हैं लेकिन हम है अनादि अनंत, ऐसा कहते हैं ना, वो अपेक्षा ध्यान में रखना। तो यहाँ क्या कहा कि सेकंड लाइन आज ये व्यक्ति रूप मोक्ष छे ए तो नवी उत्पाद वे रूप पर्याय परिणाम छे ने ते पर्याय आर्थिक नयनो विषय छे। जारे शक्ति रूप मोक्ष छे ए तो क्षायिक भाव थी निरपेक्ष, यानी वहां कोई किसी अन्य की अपेक्षा ही नहीं है, पर्याय से भी अपेक्षा नहीं है। तो कहते हैं क्षायिक भाव थी निरपेक्ष त्रिकाल एक रूप भाव छे, यानी उसमें कोई वधघट नहीं होती, हीन अधिकता नहीं होती है, तीनों काल में एक जैसा वह स्वभाव रहता है। तो उसको दूसरी भाषा में कहते हैं एक सदृश परिणाम। तो परिणाम कहने से पर्याय मत समझना, एक जैसा है कैसा है, शुद्ध 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 ऐसा। तो कह रहे एक क्षायिक भाव थी निरपेक्ष त्रिकाल एक रूप भाव छे अने ते द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे। आना ऊपरना विस्तार थी प्रवचनों थई गया छे, त्यांथी विशेष जो अब कहते बृहद द्रव्य संग्रहनो संग्रहनी 13मी गाथानी टीकामां भव्य अभव्यनी वात आवे छे, त्यां पारिणामिक भावना शुद्ध अशुद्ध एम बे प्रकार लीधा छे। भव्य अभव्यना भेद पड्या ए अशुद्ध पारिणामिक भाव छे, अने 10 प्राण कृत जीवत्व पण अशुद्ध पारिणामिक भाव छे, अने ते पर्याय आर्थिक नयनो विषय छे। भेद छे ने अनेकपणु छे एज अशुद्ध छे, माटे ते पर्याय आर्थिक नयनो विषय छे। अभेद एक रूप अखंड छे ते शुद्ध छे, शुद्ध पारिणामिक भाव छे अने ते द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे। अभी ये हम जब बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा था उसमें 13मी गाथा में ये बात आई थी, तो वहां वो भव्यत्व का मतलब सॉरी पारिणामिक भाव के भी तीन भेद हमने देखे थे, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। तो वहां जो उन्होंने दो भेद किए थे, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो वो शुद्ध में या अशुद्ध जो पारिणामिक भाव है, और ये 10 प्राण जो व्यवहार से जो 10 प्राण बताए हैं वे सारे पर्यायार्थिक नय का विषय है, और जो पारिणामिक भाव जो है वह तो कहते हैं द्रव्यार्थिक नय का विषय है। आ पारिणामिक भावनी व्याख्या करी, हवे ए पारिणामिक भाव मा शू स्थित छे तो कहे छे सहज परम पारिणामिक भावे स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम स्थित छे, अने ते नियम एटले कारण नियम छे। ये बात भी हमने देखी थी। तो कहते पारिणामिक भाव मा शू स्थित छे, उसमें क्या है क्या एक्चुअली, तो कहते हैं दो बातें हैं। क्या है कि सहज परिणामिक भाव रूप से क्या क्या रहा है कि स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक ऐसा जो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है वो उसमें स्थित है, और उसको प्रकट करना वो है कारण नियम। और वो जो प्रकट करने वाला जो कार्य होगा वो कार्य नियम होगा और वही करने योग्य ऐसा आगे बताएंगे। जो शूं की दुआ के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद तथा अनंत वीर्य एम स्वभाव चतुष्टय मैं जे शुद्ध ज्ञान चेतना छे ते परम परिणामी भाव मां स्थित छे। यानी ये जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है क्या होएगी, वो स्वभाव में से आएगी। इसलिए कहते हैं कि स्वभाव में स्थित कौन से के परम पारिणामिक भाव में स्थित छे। आ त्रिकाड़ी ज्ञान चेतना नी वात छे हो। अहो पहला त्रिकाड़ी परम पारिणामिक भाव कयो अने हवे तेमा रहेला स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टय ए गुण कह्या अने ते स्वभाव अनंत चतुष्टय नु एक रूप जे शुद्ध ज्ञान चेतना छे एम लीधु। समझाणु काय, कुछ समझ में आया? हाँ, नहीं समझो, थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा। देखो ये बात बता रहे हैं कि अपना स्वभाव कैसा है। इसमें पहले दो भेद देखते हैं कि स्वभाव में तो हम अभी शुद्ध है और यह स्वभाव में शुद्ध आज है ऐसा नहीं। अनादि काल से अनंत काल तक स्वभाव में कभी भी अशुद्धता नहीं आएगी। हाँ, तो जो स्वभाव में जो शुद्धता है वह जब जीव उस स्वभाव में अपना उपयोग केंद्रित करेगा तो पर्याय में भी वो पर्याय भी जैसा यहाँ शुद्ध स्वभाव है वैसा पर्याय में भी आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पर्याय जो है ज्ञान दर्शन रूपी जो ज्ञान चेतन ज्ञान की जो पर्याय है वो ज्ञान की पर्याय यानी आयना है। आयना तो हम अन्य को देख रहे हैं तो इस आयने में क्या प्रतिबिंबित होगा, ये सब बाहर की वस्तुएं जो हम जान रहे हुआ है। लेकिन वो जानते जानते जब वह जीव अपनी पर्याय रूपी आयना स्व के तरफ लेके जाएगा तो स्व का स्वभाव कैसा है, त्रिकाल के शुद्ध चेतना स्वरूप है, अनंत चतुष्टय रूप है, ऐसा स्वभाव वैसा है। तो जब वो आयना इधर देखेगा तो उसमें क्या झलकेगा कि जैसा त्रिकाली स्वभाव है वो उसमें आएगा। तो यहाँ शक्ति रूप से है, शक्ति रूप से यानी जो विद्यमान था उसकी जो है मतलब वो, और व्यक्ति रूप से यानी व्यक्त हुआ हुआ जो पर्याय है, पर्याय में जो प्रकटता आई है शुद्ध रूप वो व्यक्त रूप ही है। तो ऐसी वो आएगी। तो अभी यहाँ कहते देखो आप पारिणामिक भावनी व्याख्या करी नहीं इसके ऊपर क्या है ना कहा देना बराबर। हाँ तो ये पारिणामिक भाव क्या है वो बता रहे। हाँ तो हाँ बोलिए। स्वभाव में है पर्याय में नहीं आएगा बिल्कुल। मतलब अभव्य जीव के भी स्वभाव तो भव्य जैसा ही है लेकिन उसमें पर्याय में ऐसी कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि वैसा वह पर्याय में प्रकट करें। इसलिए पहले तो अभव्य किसको कहा है कि जो मोक्ष प्राप्त नहीं करे ऐसी जिसके पास योग्यता है, और जो मोक्ष प्राप्त कर सके ऐसी जिसकी योग्यता है उसको भव्य कहा। अब थोड़ा सा हम उस इन्फरेंस से नीचे उतरते हैं तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करे उसको हम भव्य कह सकते हैं। क्यों कि एक दफे कोई जीव सम्यक को प्राप्त करता है तो उसको मोक्ष मळे ते छुटको, यानी मोक्ष मळता छुटको क्या बोलते हैं, यानी उसको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं कल अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उसको मोक्ष तो मिलेगा ही। तो वो जो सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है तो वह जीव भव्य कहने में आता है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। अब क्या है, अभी थोड़ी सी डेंजरस बात है। भव्य जीव जो है वे भी दो प्रकार के हैं। या अभव्य की बात करी कि एक भव्य ऐसे हैं कि वो दोनों भव्य मोक्ष प्राप्त करें ऐसी योग्यता धारक है, लेकिन ऐसे कोई भव्य है कि उनके पास योग्यता होते हुए भी तीन काल में वो मोक्ष नहीं जाएंगे। आप जो भी नाम देना है दो हा? और कोई ऐसे है कि निकट भव्य है, निकट भव्य इन द सेंस कुछ काल में वह भले अर्धपुद्गल परावर्तन भी लेता हो फिर भी वो निकट भव्य है, क्योंकि अनादि अनंत काल इतना लंबा चौड़ा है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते। उसकी अपेक्षा एक अर्धपुद्गल परावर्तन कुछ नहीं है, वैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल है, मतलब अनंत समयों का काल है वो, उस अपेक्षा से जब हम भव्य की बात देखते हैं तो भव्य भी दो प्रकार के, कि जो हमेशा तो बहुत लोग डरते हैं ना, अरे सब लोग 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाएंगे तो इस संसार में कौन रहेगा, तो कहते हैं कि संसार में हमेशा भव्य रहेंगे ही रहेंगे और अभव्य भी रहेंगे। देखो ऐसा कहते हैं कि जितने भव्य कितने हैं, अभव्य कितने हैं, तो अनंत है, और भव्य कितने हैं, अनंत से अनंत गुणा करो और उसको अनंत गुणा करो उतने तो भव्य है। तो हम तो मेजॉरिटी में रहना चाहिए ना, काहे को इधर उधर देखना। परसों किसी ने पूछा था कि हम भव्य है कि नहीं, हा? तो भाई किसी ने पूछा, कहने अपने आत्मा का स्वरूप की पहचान करने में वो वक्त व्यतीत करता है। अभी देखो ये मेरी बात नहीं है या आपको मस्का लगाने की बात नहीं है, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता भी श्रुता, यानी ये आत्मा की बात जो तत्व जो है ना वो प्रीति चित्तेन मतलब बहुत प्रीति पूर्वक सुनता है तो वह निश्चित रूप से भव्य जीव है। हमने देखा था ना समय सार में आता है नहीं, हाँ बोलो बराबर,
पद्मनंदी पंचमी
पंचमविंशति में आता है हाँ, लेकिन उसमें
कोटेशन प्रीति चित्ते येन वार्ता श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्य भावि निर्वाण भाजनम,
ऐसा उसमें दिया है पद्मनंदी पंचमविंशति में दिया है। और ये बात गुरुदेव ने समय सार के प्रवचनों में बार बार उसका उल्लेख किया, तो ऐसा घबराने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा नर्वसनेस भी किसी को आना नहीं चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि भाई ऐसा खोटा काल है, देखो अभी तो कितने लोग तो टीवी में घुसे रहेंगे, घर में जाके देखो तो कि उधर क्या हो गया, वो वी पर क्या कहता है और अपना वो 15 तारीख को क्या होने वाला है, वो गोधरा में क्या हुआ, और इसी में पूरा समय जाता है। अरे हम सुबह घूमते हैं ना 5 बजे 5:30 बजे तो उधर भी ऐसे टोले के टोले निकलते हैं ऐसे यंगस्टर आपस में यही बात और जोर जोर से, क्योंकि गुजरातियों को तो कभी आस्ते बोलने का मालूम ही नहीं रहता है, और आधे माइल पे भी समझ में आते हैं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। यही बात बिना कारण मैं कोई लेना ना देना, यानी एम नहीं करवो जो आम करो यार हिल रहे तो बराबर एम करो, तू यहाँ बैठे बैठे क्या चिंता कर रहा है। तो हम अपने तरफ देखें कि देखो हम इतना पूरा दिन में 24 घंटे में कम से कम एक आध घंटा जाने आने में आधा पौना घंटा 2 घंटा निकालते हैं, कोई कोई तो सुबह शाम आने वाले हैं, कोई कोई 2-2 घंटे बैठने वाले हैं, यहाँ तो ऐसा जीव क्यों बैठता है? क्या सबको ऐसा हो सकता है कि घर में किसी को सासु बहुत तकलीफ देती हो या किसी की बहू बहुत तकलीफ देते हो इसलिए यहाँ आते हैं, ऐसा तो किसी का होगा नहीं अपने यहाँ, मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि एकाध दिन तकलीफ दे, अरे हमारे पास तो नौ नौ दस दस साल से लोग आते हैं, क्या नहीं? तो इससे तो समझ में आता है कि भाई ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम तो अपने स्वरूप को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करें, तत्व निर्णय करें और उसका अनुभव करें। आपके प्रश्न का उत्तर आ गया ना बेन? नहीं तो हम उसके अलावा भी और कुछ बोल गए। हाँ भाव भाव मोक्ष और व्यक्ति मोक्ष। देखो व्यक्ति मोक्ष यानी व्यक्त हुई हुई जो पर्याय मोक्ष रूप है वो छाईक छाईक यानी छाईक भाव यानी वो पर्याय है ना, छाईक भाव पर्याय है क्योंकि चार भाव तो पर्याय भाव है और एक पारिणामिक भाव ही द्रव्य भाव है, उसके साथ उसकी कंपैरिजन की। आपका क्या प्रश्न है? हाँ भाव मोक्ष वही कहो, क्योंकि वो तो द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष ऐसे उसके दो प्रकार की है। तो भाव मोक्ष यानी सब सारे द्रव्य मोक्ष यानी सारे कर्म निकल जाना और भाव मोक्ष यानी व्यक्त रूप पर यह हो ना, और ये भी व्यक्ति मोक्ष वही है व्यक्ति रूप मोक्ष। हाँ वही वही है। आपका कुछ कहना है उसमें?
शायद भाव लिखा ना तो वहाँ कर्म की अपेक्षा देखेंगे तो वहाँ कर्मों का क्षय हो गया है और जीव में क्षायिक भाव प्रकट हो गया है। जीव के भाव को क्षायिक भाव कहा है और वहाँ वैसे तो अरिहंतों को भी भाव मोक्ष होता है ऐसा कहा। हाँ।
वो उपचार से
तो वहाँ भी क्षायिक भाव तो प्रकट है ना। हाँ
देखो जब आठों कर्मों का क्षय होगा तभी उनको व्यक्ति
वो तो व्यक्ति रूप पूरा मोक्ष।
और यहाँ अनंतों को भी भाव मोक्ष जो कहा है वो भी उपचार से कहा है क्योंकि घाती कर्म निकल गए हैं, अघाती बाकी है। ऐसा कायदे से देखा जाए तो अभी आधे कर्म तो है फिर भी उनको भाव मोक्ष का है। अरे वैसा क्या है? ये चतुर्थ गुणस्थान वर्दी जीव को दृष्टि मोक्ष
दृष्टि मोक्ष
द्रव्य मोक्ष।
द्रव्य मोक्ष तो
वो कर्मों की अपेक्षा
को सिद्ध भगवान वो द्रव्य मुक्त हो गए। हाँ। नहीं नहीं यहाँ व्यक्ति यानी पर्याय मोक्ष की पर्याय ऐसा लेना।
हाँ। अभी क्या बात हो रही देखो, आ पारिणामिक भाव ने व्याख्या करी, हवे ये पारिणामिक भाव में शू स्थित छे यानी उसमें शू पारिणामिक भाव में क्या क्या है तो कहे छे सहज परम पारिणामिक भावे शू छे के स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक अने शुद्ध ध्यान चेतना परिणाम चित छे अने ते एक परिणाम कहने से वो पर्याय मत लेना तो स्वभाव भाव लेना। अने ते नियम एटले कारण नियम छे जो शू कीधु आ के अनंत ज्ञान या अनंत चतुष्टयात्मक जो बात है वो कह रहे हैं अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद तथा अनंत वीर्य एम स्वभाव चतुष्टय में जे शुद्ध ज्ञान चेतना छे यानी दोनों एक ही है वो ये एम स्वभाव चतुष्टय में जे शुद्ध ज्ञान चेतना छे ते परम परिणामिक भाव में स्थित छे आ त्रिकाली ज्ञान चेतना नी वात छे। हो अहो पहला त्रिकाली परम परिणामिक भाव कहो अने हवे तेमा रहेला एटले स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टय ये गुण कहया अने ते स्वभाव अनंत चतुष्टय नु एक रूप यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है वधघट नहीं होती है पर्याय नहीं है एक रूप है इसलिए उसको शुद्ध ज्ञान चेतना छे एम लिदू। प्रश्न आ अनंत ज्ञानादि चतुष्टय तेषु ध्रुव लेवा। हा ध्रुव लेवा केम के आ त्रिकाली गुण छे स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम एम लीधु छे ने यानी वो तो त्रिकाली ऐसा रहने वाला कांस्टेंट रहने वाला ऐसा जो स्वभाव है तो स्वभाव तो हमेशा एक जैसा ही रहता है एक रूप रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है इसके लिए हमको वो अग्नि का उदाहरण बहुत इजी समझने के लिए है, क्योंकि अग्नि कभी कम उष्ण और कभी अधिक उष्ण ऐसा नहीं होती, उसकी उष्णता तो बिल्कुल एक जैसी होती हमेशा। वैसे यहाँ ये जो ज्ञान चेतना जो है वह भी त्रिकाली एक जैसी रहेगी। क्या कहते हैं फिर से प्रश्न, आ अनंत ज्ञानादि चतुष्टय तेषु ध्रुव लेवा। हा ध्रुव लेवा, केम के आ त्रिकाली गुण छे स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम एम लीधु छे ने, मतलब के स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक अर्थात स्वभाव अनंत ज्ञानादि चार तेनु एक रूप ते शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम छे, आवी झीणी वात छे प्रभु। तो शू आ कारण शुद्ध पर्याय छे? तो कहे छे के ना, अहीं तो त्रिकाळी गुणनी वात छे, अहीं तो त्रिकाळी गुणनी वात छे, कारण शुद्ध पर्यायनी वात तो त्यां पंदरमी गाथामां आगळ आवशे। अहीं तो कहे छे परम पारिणामिक भावमां त्रिकाळी ध्रुव भावमां स्थित रहेल शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम छे। हवे अहीं जे परिणाम कीधा छे, जे परिणाम शब्द छे तेनी व्याख्या करे छे। पहला त्रिकाळी परम पारिणामिक भावनी व्याख्या करी हती, हवे अने हवे एमां स्थित शुद्ध ज्ञान चेतना परिणामनी व्याख्या करे छे। नीचे फूटनोट में जुओ तो वो तो पहले हमने देख लिया था, आ शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम में परिणाम शब्द होवा छता ते उत्पाद वे रूप परिणाम ने सूचववा माटे नथी अने पर्यायार्थिक नयनो विषय नथी। आ शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम तो उत्पाद वे निरपेक्ष एक रूप छे अने द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे। शुं कीधु? शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम मा परिणाम शब्द छे ते उत्पाद वे रूप अवस्था ने सूचववा माटे नथी, केम के त्रिकाळी परम पारिणामिक भाव मा स्थित एटले रहेला भाव ने अहीं शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम कहेल छे। ये तो वही बात फिर से दोहराई है उन्होंने। हा हा, पहला त्रिकाळी परम पारिणामिक भाव में पारिणामिक शब्द उत्पाद वे ने सूचववा माटे नथी एम कह्युं हतुं, अने हवे कहे छे के आ शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम त्या परिणाम शब्द उत्पाद वे ने सूचववा माटे नथी। आ तो ध्रुव ध्रुवमां स्थित ध्रुव गुणोनी वात छे। जो त्रिकाळी ऐसा जो स्वभाव है या आत्मा है उसमें जो त्रिकाळ रहने वाले ऐसे जो गुण है उनकी यहां बात समझा रहे। वड़ी कहे छे पर्याय आर्थिक नयनो विषय नथी। आहा, आ त्रिकाळी शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम पर्याय ने वर्तमान वर्तती अवस्था ने विषय करनार पर्यायार्थिक नयनो विषय नथी। ए तो उत्पाद वे निरपेक्ष एक रूप छे, ध्रुव छे अने द्रव्यार्थिक नयनो विषय छे। आहा, बधा शब्दों एक ज छे, ऊपरना पारिणामिक भावना बोल जेवाज छे। आहा, परम पारिणामिक भावे स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम मा परिणाम शब्द उत्पाद वे रूप परिणाम सूचववा माटे नथी। एक ही बात उन्होंने कम से कम चार पांच बार बताई है, अर्थ तो ऐसा ही लेना है कि यहाँ जो परिणाम कहा है वह पर्यायवाची पर्याय को बताने वाला शब्द नहीं है, सूचववा माटे यानी उसको सूचित करने वाला। लेकिन कहते हैं वो जो त्रिकाली जो स्वभाव है वो त्रिकाली गुण जो उसमें है स्थित उनको यहाँ वह दर्शाता है। ते शू सूचवे छे? परम पारिणामिक भावनी जेम शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम पन ध्रुवपना ने सूचवे छे। आ नियम जे मोक्षनो मार्ग प्रकट थाय छे तेना कारण रूप एवो ध्रुव ध्रुव नियम एटले कारण नियम अंदर छे एम कहे छे। अहो एमनी श्री पद्म प्रभ मलधारी देवनी આખી શૈલી જ આવી છે અને તે અહીંથી કાર્ય નિયમ સાથે કારણ નિયમ કહીને ઉપાડી છે. પછી આગળ પ્રાયશ્ચિત્તાદિના બોર્ડમાં પણ કહેશે, આત્મા પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વરૂપ છે એમ કહેશે. એ આગે કી બાત અભી ઉન્હોને ખાલી સૂચિત કર દી આપણે. હા હા, કહે છે નિયમથી કરવા લાયક તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના પરિણામ છે, પણ તે નિભજે કેમ, કોના આશ્રય નિભજે, કોણ છે ભગવાન કે પાસે જાવે તો નિભજે, પારસનાથ કે પાસે જાવે, ક્યાં શીતલનાથ કે પાસે જાવે. હા બેન, કોણ છે ભગવાન કે પાસે જાને સમ્યક દર્શન હોગા, કોણ છે બેન, તો કહાં જાતે મિલેગા. બહુ અચ્છા બહુ અચ્છા, અપને સ્વભાવ મેં અગર હમ જાગતે હૈ, ઉધર હી અપની દૃષ્ટિ કેન્દ્રિત કરતે હૈ, ઉધર હી ઉપયોગ લગાતે હૈ, તો વહ જો શક્તિ રૂપ સે બડા હુઆ હૈ વો વ્યક્ત રૂપ હો જાયેગા. તો ક્યાં કહેતે હૈ કે કોના આશ્રય નિભજે, તો કહે છે કે ત્રિકાળી શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કે જે પરમ પારિણામિક ભાવમાં સ્થિત છે તેના આશ્રય નિભજે. ક્લિયર કટ આ ગયા ને, યાની કારણ નિયમ હૈ કબ કહેને મેં આયેગા, કે જબ કાર્ય નિયમ પ્રકટ હોગા, યાની સમ્યક દર્શન જ્ઞાન સ્વરૂપ જો આત્મા હૈ વો કિસકો હૈ, તો કહેતે જિસને વહ પર્યાય મેં પ્રકટ કિયા ઉસકો વહ કારણ હૈ, અન્યતા વો હૈ નહીં, એક જૈસા હૈ. દેખો દેખો ક્યાં કહેતે, તો કહે છે ત્રિકાળી શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ કે જે પરમ પરિણામિક ભાવમાં સ્થિત છે, કે પહેલે ઉન્હોને સિદ્ધ કિયા કે પરમ પરિણામિક ભાવમાં વો હૈ, તો તેના આશ્રય નિભજે, એટલે ઉસકે આશ્રય કરને સે વો ઉત્પન્ન હોગા. હા હા, પરમ પરિણામિક ભાવમાં જે સ્થિત છે તે પણ પરિણામિક ભાવે જ છે. શું કીધું, અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત આનંદ અને અનંત વીર્યનું એક રૂપ કે જે સ્વભાવ અનંત ચતુષ્ટયાત્મક શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ છે તે પણ ત્રિકાળી પારિણામિક ભાવે છે, ધ્રુવ ભાવે છે, નિત્ય ભાવે છે, એક સદ્રશ ભાવે છે, અને તે ઉત્પાદવે નિરપેક્ષ એક રૂપ છે તથા તે દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે. આહા, આવો તે નિયમ એટલે કારણ નિયમ છે. હવે સંપ્રદાયમાં તો આ વાતની ગંધે નથી, ગંધે નથી, અને ગંધે નથી એટલે શું, તને ખબર નથી, તને ગંધે નથી એમ કહે છે, બરાબર કહે છે તું, પણ એ ખબર નથી એનો જ અર્થ એને ગંધે નથી, તો તેને ગંધે નથી તેનો તને ગંધ નથી એમ કહેવાય, તો તને એની પણ ખબર નથી એમ કહે. આવો તે નિયમ છે. હવે સંપ્રદાયમાં તો આ વાતની ગંધે નથી, સૂક્ષ્મ વાત છે પ્રભુ. એ બાર બાર ક્યું કહેતે કે સૂક્ષ્મ વાત છે, એ એટલે કે જબ તક હમ અપના ઉપયોગ સૂક્ષ્મ નહીં કરતે હૈ તો એ વાત બેઠને મેં તકલીફ આતી. હમકો તો લગતા બાર બાર વહી વહી બાત બતા રહે, વહી વહી બાત બતા રહે, લેકિન અભી તો કમ સે કમ પાંચ છ બાર તો સુના હૈ, તો કોઈ એસા રિપીટ કરેગા ક્યા બતાયા સાહેબ. આપ બતા સકે કે ના, બોલો બોલો, ઘબરાતી ક્યો હૈ તુમ, બતાઓ કે મુજકો ખાતરી હૈ બિના દેખે. હા કારણ નિયમ, યાને જો બરાબર કહે આપને, યાને આપ યે કહે રહે કે જો ત્રિકાલી જૈસા સ્વભાવ હૈ, જો પરમ પારિણામિક ભાવ હૈ, ઇસમે વૈસી કા અર્થ હૈ, પરમ પારિણામિક ભાવ કહો યા શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના સ્વરૂપ કહો યા ઓર એક ઉન્હોને બાત બતાઈ થી, હા અનંત ચતુષ્ટય રૂપ જો સ્વભાવ હૈ વહ તો ગુણ રૂપ સે કાયમ વિદ્યમાન હૈ, હા ઉસ એક રૂપ હૈ, ઉસમે કોઈ અદલા બદલ નહીં હોતી, કમ અધિક નહીં હોતા, વો જો એક રૂપ પરિણામ હૈ, અબ હમ ઉસમે आश्रय लेके उसमें कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, रममाण हो जाते हैं, तो वो पर्याय में व्यक्त होता है। तो वो जो कायम रहने वाला है उसको कारण नियम कहा, क्योंकि नियम सार की बात हो रही है। अब जो वो हम पर्याय में व्यक्त करते हैं तो वो कार्य नियम होगा, और कार्य नियम होगा उसको ही वो कारण नियम है ऐसा कहने में आएगा, क्योंकि जो कार्य नहीं करेगा तो उसको कारण कौन करे ऐसा कहें। तो कहे देखो देखो सूक्ष्म वाच छे प्रभु कहे छे अंदर वस्तु छे तेमा त्रिकाल टकतो अंश जे ध्रुव एक रूप छे ते परम परिणामिक भावे छे अने ते रूप शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम छे एम आई बताऊ छे। तो और एक बार वही बात उन्होंने दोहराई है। हा हा मोक्ष नो मार्ग के जे नियम थी करवा लायक छे, तुम जो मोक्ष का मार्ग कहो या शुद्ध रत्नत्रय कहो या सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र कहो सब एक ही है, तो ये नियम थी करवा लायक छे। ये करवा लायक छे तो वो कहाँ होगा? पर्याय में, क्योंकि जो कार्य होगा वो पर्याय में होगा। आ ध्रुवना आश्रय थाय छे, वो ऊपर लिखा ना, तो केम निपजे तो ध्रुवना आश्रय थाय छे, माटे ए ध्रुवने पण नियम एटले कारण नियम कहेल छे। समझाणू काई भाई? आ तो महाभाग्य होय तो सांभळवा मळे एवी चीज छे, केम के आ परम सत्य वात छे। हा हा टीकाकारे शुं काढ्युं छे? नियमेण य जम कज्जम, नियम એટલે કાર્ય નિયમ બતાવવો છે તો તેમાંથી આ કાયડું કે કાર્ય છે તો તેનું કારણ પણ નિયમરૂપ ત્રિકાળ છે, કેમ કે દ્રવ્યનું ત્રિકાળી સ્વરૂપ એટલે કારણ નિયમ ન હોય તો તેની એક સમયની પર્યાય એટલે કાર્ય નિયમ જે પ્રકટ થાય તે પ્રત્યે ક્યાંથી? માટે કાર્ય નિયમ જેના આશ્રય પ્રત્યે છે તે ત્રિકાળી કારણ નિયમ વિદ્યમાન છે જ, એ તો પ્રાયશ્ચિત્ત અધિકારમાં પણ આવશે કે સ્વભાવ અપેક્ષાએ જીવદ્રવ્યને પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવું. ક્યાં જીવદ્રવ્ય કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય? એ આગે આગે જૈસે બઢેંગે ને ઓર બઢિયા બઢિયા બાત આને વાલી. 116 નંબર કી ગાથા મેં યે બાત આઈ. હા હા અંદર શુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના પરિણામ એવો જે ધ્રુવ ત્રિકાળી ભાવ છે તે કારણ નિયમ છે. હાજે ને ત્રિકાળી જે ભાવ હૈ ઉસકો ક્યાં કહા? કારણ નિયમ કહા હૈ. કારણ પરમાત્મા વો અલગ અપેક્ષા સે કહેંગે, મતલબ હૈ વહી કારણ પરમાત્મા ઓર કાર્ય પરમાત્મા. કારણ સમયસર ઓર કાર્ય સમયસર. હા નામ કહે, નામ ફરક હૈ. આ ત્રિકાળી કારણ નિયમ તે ધ્રુવ વસ્તુ સ્થિત છે તેથી ધ્રુવ છે. જ્યારે આ જે મોક્ષની મોક્ષનો માર્ગ છે તે કાર્ય નિયમ છે, પર્યાયનો નિયમ છે, અને તે ત્રિકાળી ધ્રુવ कारण नियम ना आश्रय प्रकट थाय छे.
ख्याल में है ना? देखो अभी आपका प्रश्न का उत्तर है, मोक्ष मार्ग की बात है, कारण परमात्मा कार्य परमात्मा ये तो परमात्मा दशा की बात है, और ये परमात्मा दशा की पहली वाली जो मोक्ष मार्ग जो है उसकी बात है. वो मोक्ष मार्ग भी कहाँ से प्रकट होगा? यानी जो कार्य नियम कहा मोक्ष मार्ग या कार्य नियम, तो जो कारण नियम है उसका लक्ष्य करने से कार्य नियम प्रकट होगा.
अभी वैसे देखा जाए तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, यानी परमात्मा पद प्राप्त किया तो वो अरहंत अवस्था में जो है
पर्याय प्रकट,
तो वो कार्य परमात्मा
परमात्मा हुआ,
लेकिन वहां तो मोक्ष नहीं हुआ.
दोनों को ले सकते हैं ना, अरिहंत सिद्ध दोनों को ले सकते हैं,
क्योंकि मोक्ष मार्ग में 13-14 गुण स्थान लेना क्या नहीं लेना,
मोक्ष भाव मोक्ष का ना वहाँ वैसे संवर है वहाँ 14 तक, संवर और निर्जरा 14 तक,
ये तो खींचा तानी है समझ ले। ऐसे इन जनरल सामान्य रूप से दोनों को एक कहने में कोई तकलीफ नहीं, और बहुत डिटेल में देखे तो ये कहती बराबर।
नियम में मोक्ष मार्ग लेना और परमात्मा में तो मोक्ष अरिहंत परमात्मा दशा लेना, अभी वो परमात्मा दशा में अरिहंत सिद्ध दोनों को ले सकते।
देखो फिर से ये पढ़ता हूँ, ये नया पैराग्राफ चालू किया है ना, आहा अंदर शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम एवो जे ध्रुव त्रिकाली भाव छे ते कारण नियम छे, आ त्रिकाली कारण नियम ते ध्रुव वस्तु स्थिति छे, वस्तु स्थित छे, वस्तु तेथी ध्रुव छे, जारे आजे मोक्षनो मार्ग छे ते कार्य नियम छे पर्यायनो नियम छे, અને તે ત્રિકાળી ધ્રુવ કારણ નિયમના આશ્રય પ્રકટ થાય છે। શું કીધું કે જે ત્રિકાળી કારણ નિયમ છે તેના આશ્રય કાર્ય નિયમ પ્રકટ થાય છે, સમજાણો કાંઈ? આ સમજાય એવું છે હો, પણ ધ્યાન તો રાખવું જોઈએ ને, ક્યાં કહેતે અભી અમને બધા સૂક્ષ્મનો ઉપયોગ રાખો તો સમજાય એવું છે, પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને, એમ કહેશે। अभी आगे की बात कर लेंगे, एक दो मिनट है, किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। कौन सा? अभी पैराग्राफ जो पढ़ा था, देखो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसमें ऐसा कह रहे हैं कि जो त्रिकाली स्वभाव है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसको ही कहते परम परिणामिक भाव, उसको ही कहते शुद्ध ज्ञान
चेतना
स्वभाव
परिणाम,
और उसको भी कहते हैं वो कैसा है, तो कहते हैं कि वह उत्पाद व निरपेक्ष है और एक रूप रहने वाला ऐसा वो है। ये सारे बताकर ये कहते हैं कि ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, यानी उसमें यहाँ पर्याय को शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो स्वभाव होगा वो स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहेगा, स्वभाव में कमी वधघट नहीं होती, हीन अधिकता नहीं होती, इसलिए उसको एक रूप परिणाम का, एक रूप स्वभाव का, और वो जो उत्पाद वे जो होता है वो उसमें हीन अधिकता होती है, और वो हीन अधिकता स्वभाव में कभी नहीं रहेगी, इसलिए उसको परम परिणामिक भाव जो कहने में आया है, परिणामिक भाव। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि वो जो त्रिकाली ऐसा जो अपना स्वभाव है उसको इस पुस्तक की अपेक्षा से, इस ग्रंथ की इन रेफरेंस टू दैट, उसको कारण नियम कहा है। अब कारण के बिना कार्य नहीं होता है, तो यहाँ कार्य क्या होना है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, तो वो कहाँ से उत्पन्न होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? तो कहते हैं जब तक वो जिसमें स्थित है ऐसे स्वभाव के तरफ अपना उपयोग नहीं जाता है तब तक वैसा कार्य नहीं होगा। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग शुरू होगा उसको कार्य नियम कहेंगे, और वो कार्य नियम कैसे प्रकट होगा कि जो कारण नियम नामक अपना जो शुद्ध स्वभाव हमेशा त्रिकाली रहने वाला है उसका आश्रय लेवे, उसका आश्रय लेने के यानी जाके उसको लटकना, उसको पकड़ के रखना, ऐसा कुछ नहीं। आश्रय लेने का अर्थ कि हमारा जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, यहाँ दर्शन को हटा दो, जानना 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 जो स्वभाव है वो हम दुनिया को जानने में ही अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं, उसको जानना छोड़कर स्व को जानना, स्व को जानते ही रहना, यही कहते हैं कि उसका आश्रय लेना, उसको ग्रहण करना। ग्रहण करना यानी थोड़ी आत्मा के कोई हाथ पैर है कि उसको ग्रहण करके रखे, ये तो अन्य को न जानते हुए इसको जानना, और वो जानना जानना कंटिन्यूएशन में रहेगा तो उसी में स्थित हो जा कहेंगे, तो उसको भी चारित्र कहेंगे। तो वो उसका आश्रय हम लेते हैं या उसको ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि कार्य नियम प्रकट होगा और ये इसी तरह से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी और उसी में अधिक अधिक एकाग्रता लीनता करेंगे तो मोक्ष की पर्याय भी प्रकट होगी। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकायो बोलो जिनवानी माता की।